इप्सिता के दिमाग में जैसे ही ये बात आई, उसने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, ये सब हम क्या कह रहे हैं, हमें इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इप्सिता इतना बोलकर सामने की तरफ देखने लगी। तभी इप्सिता को अपने पीछे से एक बहुत ही जानी पहचानी सी आवाज़ सुनाई दी। किसके बारे में सोच रही हो, और इतना परेशान होने का क्या मतलब है? आखिर बात क्या है? क्या हम पूछ सकते हैं कि यहाँ अकेले सबसे दूर बैठने का क्या मतलब है? इप्सिता ने जैसे ही वो आवाज़ सुनी, वो तुरंत ही उस आवाज़ को पहचान गई, और उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ अभिमन्यु खड़ा था। वो अभिमन्यु को देखकर थोड़ा सा हड़बड़ाई और उठकर खड़ी होने लगी। तभी अभिमन्यु ने उसका हाथ पकड़ा और उसे पकड़कर वहीं ज़मीन पर बैठा लिया, और खुद भी ज़मीन की ठंडी रेत पर बैठ गया। इप्सिता अभिमन्यु को इस तरह ज़मीन पर बैठते देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गई, और उसने अपने मन में कहा, अभिमन्यु को क्या हो गया है, वो इस तरह ज़मीन में बैठ रहे हैं, और इन्हें कैसे पता चला कि हम यहाँ पर हैं, ये यहाँ पर कैसे आए? इप्सिता ये सोच रही थी, और इतना सोचते हुए उसी की भौहें सिकुड़ गईं। अभिमन्यु ने इप्सिता के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, आप यही सोच रही होंगी ना कि हमें कैसे पता चला कि आप यहाँ हैं? इप्सिता ने अभिमन्यु की बात सुनकर अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाते हुए कहा, नहीं, हम ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहे। अभिमन्यु इप्सिता को इस तरह बर्ताव करते देखकर मुस्कुराया, और उसने कुछ नहीं कहा। वहीं इप्सिता, जो सामने की तरफ डूबते हुए लाल सूरज की तरफ देख रही थी, तभी अभिमन्यु ने इप्सिता के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, इप्सिता। जैसे ही इप्सिता ने अभिमन्यु के हाथ को अपने हाथ पर महसूस किया, उसने तुरंत अपना हाथ उसके हाथ के नीचे से निकालते हुए कहा, ये क्या कर रहे हैं आप अभिमन्यु? अभिमन्यु ने इप्सिता की तरफ देखते हुए कहा, हमें आपसे बात करनी है, और हमें नहीं लगता इससे अच्छा मौका हमें अब और कभी मिल पाएगा। अभिमन्यु की ये बात सुनकर इप्सिता ने हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए कहा, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? आप ठीक तो हैं ना? अभिमन्यु ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, आपको हमारे लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम बिल्कुल ठीक हैं, और कल हमें संभालने के लिए थैंक यू सो मच। इप्सिता ने एक गहरी सांस ली, लेकिन उसने अभिमन्यु की बात का कोई जवाब नहीं दिया। तभी अभिमन्यु ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और इप्सिता के गाल पर अपना हाथ रखकर उसके चेहरे को अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, हम जानते हैं इप्सिता, आप हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, लेकिन हमने बिल्कुल नहीं सोचा था कि आप हमें इस तरह वहाँ उस रूम में अकेला छोड़कर चली जाएंगी। इप्सिता अभिमन्यु की बात का जवाब देते हुए बोली, क्यों रुकते हम वहाँ पर? हमारे पास वहाँ रुकने की कोई ख़ास वजह नहीं थी। अभिमन्यु ने उसकी बात सुनकर कहा, ख़ास वजह नहीं थी, लेकिन हम तो थे ना, क्या आप हमारे अलावा भी आपको कोई और वजह चाहिए हमारे पास रहने के लिए? इप्सिता अभिमन्यु की ये बात सुनकर बिल्कुल चुप हो गई थी। बस उसने अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया था, और वहीं अभिमन्यु उसे इस तरह करते देखकर अपने मन में बोला, हम जानते हैं इप्सिता, आप आज भी। इतना बोलते बोलते अभिमन्यु चुप हो गया। उसने इप्सिता का हाथ अपने हाथ में लिया और उसके हाथ को कसकर पकड़ते हुए कहा, हम आपकी नाराज़गी जानते हैं, लेकिन इप्सिता, आपको नहीं पता, उस दिन जब हम मंडप में नहीं आए तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि हम आपकी जान बचाना चाहते थे। आपको नहीं पता, लेकिन अगर उस दिन हमारी आपसे शादी हो जाती तो आपकी जान को कितना बड़ा खतरा हो सकता था। इप्सिता ने जैसे ही अभिमन्यु की ये बात सुनी, वो थोड़ा शॉक्ड होकर उसकी तरफ देखने लगी। तभी अभिमन्यु ने कहा, हम जानते हैं आपको भी हमारी बात समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन आप हमारी पूरी बात एक बार सुन लीजिए, उसके बाद आप जो भी फैसला करेंगी हमें वो मंजूर होगा। अभिमन्यु की बात सुनकर इप्सिता ने धीरे से अपना सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, बोलिए। जैसे ही इप्सिता ने ये बात कही, अभिमन्यु बिल्कुल ठीक से बैठा और उसने इप्सिता के हाथ को अपने दोनों हाथों भी कसकर पकड़ लिया। उसके बिल्कुल करीब आकर बोला, आपको क्या लगता है हमने इतना बड़ा कदम उठाने से पहले कुछ सोचा नहीं होगा? हम बिना सोचे समझे इतना बड़ा कदम उठा सकते हैं? क्या हम आपको इतने इमैच्योर और इरिस्पॉन्सिबल लगते हैं? इप्सिता अभिमन्यु की बात बस चुपचाप सुनती जा रही थी। तभी अभिमन्यु ने कहा, हमने तब ये बात सोची कि हम उस दिन मंडप पर नहीं आएंगे तो हमें सबसे पहले अपने परिवार से ज़्यादा आपके परिवार वालों की इज्जत का ख्याल आया था, लेकिन सिचुएशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि हम परिवार की इज्जत के बारे में सोच ही नहीं सकते थे इप्सिता, क्योंकि हमारे लिए परिवार की इज्जत इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है जितनी कि आप। अभिमन्यु इतना बोलकर जैसे ही चुप हुआ, इप्सिता की दिल की धड़कन तेज हो गई और उसने अपनी भौहें ऊपर करते हुए कहा, एक मिनट, क्या मतलब है आपका? अभिमन्यु ने कहा, आपको ये बात पता है ना कि मासा हमारी शादी इतनी जल्दबाजी में क्यों करवा रही थी? इप्सिता ने हाँ में अपना सिर हिलाया। तभी अभिमन्यु ने कहा, मासा हमारी शादी इसलिए करवा रही थी ताकि हम आपसे शादी करके कुंवर से सीधे राजा सा बन जाए। इप्सिता ने फिर हाँ में अपना सिर हिलाया। अभिमन्यु ने कहा, हमारे परिवार में मासा और अर्पिता के अलावा और कोई भी नहीं चाहता कि हम राजा बने और राजमहल हमारे कंट्रोल में आए, खासकर नरेंद्र चाचा। इप्सिता ने जैसे ही ये बात सुनी, वो बिल्कुल सीरियस होकर अभिमन्यु की बात सुनने लगी। तभी अभिमन्यु ने कहा, हमारे चाचा जी ने आपको मारने का प्लान बनाया था, उन्होंने आपको मारने की पूरी प्लानिंग कर ली थी, उन्होंने शूटर हायर किया और वो आपको मंडप में ही मारने वाले थे।
अगर हमारी आपसे शादी होती और उस दिन अगर हम मंडप में आ जाते तो फिर उससे पहले ही वो आपको जान से मार देते। हम ऐसा नहीं होने दे सकते थे। इप्सिता अभिमन्यु की ये बात सुनकर बड़ी ही हैरानी से सब सुनाती जा रही थी। तभी अभिमन्यु ने कहा, आपकी जान हमारे लिए दुनिया की सारी चीजों से बढ़कर है। आप खुद ही सोचिए, अगर आपकी जान पर खतरा होता तो भला हम कैसे ये शादी कर लेते। इसीलिए हमने इतना बड़ा फैसला लिया और हम उस दिन मंडप में आपसे शादी करने के लिए नहीं आए। इप्सिता ने अभिमन्यु की ये बात सुनकर उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, अगर आपको पहले से ही ये बात पता चल गई थी तो आप इस चीज को रोक सकते थे। आप कुंवर सा है और आपके अंदर कितना पावर है और आप क्या क्या कर सकते हैं, ये बात हम भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आपने इस अनहोनी को रोकने के लिए शादी ना करने का ही फैसला क्यों किया? आप उन्हें पकड़ सकते थे और सबके सामने उनकी सच्चाई भी तो ला सकते थे ना। इप्सिता की ये बात सुनकर अभिमन्यु ने तुरंत हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, हम मानते हैं, हम ऐसा कर सकते थे। लेकिन अगर ये सिर्फ एक इंसान की प्लानिंग होती तो हम ऐसा जरूर करते। लेकिन आप नहीं जानती इप्सिता, ये सिर्फ और सिर्फ चाचा जी की प्लानिंग नहीं है, उनके साथ कोई और भी है जो नहीं चाहता कि हम राजा बने। इप्सिता ने अभिमन्यु की ये बात सुनकर कंफ्यूज होते हुए पूछा, क्या मतलब है आपका?
अभिमन्यु ने कहा, जैसे ही हमें ये बात पता चली कि आपको मारने की प्लानिंग बनाई जा रही है, हमने तुरंत ही अपने लोगों को काम पर लगा दिया। उन लोगों ने हमें बताया कि चाचा जी अकेले ही ये सब नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके साथ कोई और भी है जो इन सारी चीजों में उनका पूरा साथ दे रहा है। वो इंसान कोई छोटा मोटा नहीं है, वो भी काफी ज्यादा पावरफुल है। हमने जब ये पता लगाया कि चाचा जी ने शूटर को हायर किया था आपको मारने के लिए, तो हमने चाचा जी के खिलाफ कार्रवाई की और उन्हें जेल में डलवा दिया। लेकिन आपको पता है, अभी दो दिन पहले चाचा जी भी जेल से बाहर आ गए हैं, वो भी बेल पर, और हमें अभी तक ये बात नहीं पता चली कि आखिर उनकी बेल किसने कराई है। हमें लग रहा है ये वही इंसान होगा जिसने इन सारी चीजों में उनका साथ दिया है। उसने ना सिर्फ चाचा जी की बेल कराई बल्कि उनके बेटे को भी ढूंढने में मदद की। अब चाचा जी जब से वापस आए हैं, उन्होंने ठान लिया है कि वो हमें राजा नहीं बनने देंगे, वो अपने बेटे को राजा बनवाना चाहते हैं। सच बताऊं तो इप्सिता, हमें राजगद्दी और राजा साहब बनने का कोई भी शौक नहीं है। हम इतने सालों से ये कुंवर सा की जिम्मेदारी उठाते उठाते थक चुके हैं। अगर चाचा जी का बेटा, जो हमारा बड़ा भाई है, राजा बनता है तो हम दिल से चाहते हैं कि वो भी राजा बने। हम तो बस अब अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं और आपके साथ अपनी लाइफ बिताना चाहते हैं। इप्सिता ने जैसे ही अभिमन्यु की ये बात सुनी, वो अभिमन्यु की तरफ बिल्कुल शॉक्ड होकर देखते हुए बोली, क्या क्या कहा आपने? आप वो सब कुछ छोड़ देंगे सिर्फ हमारे लिए? अभिमन्यु इप्सिता के करीब आया। उसने इप्सिता के दोनों गालों पर अपने हाथ रखते हुए कहा, बिल्कुल सही सुना आपने इप्सिता, हम आपके साथ अपनी पूरी लाइफ बिताना चाहते हैं। इप्सिता अभिमन्यु की आंखों में देख रही थी। अभिमन्यु ने बिना सोचे समझे सब कुछ सच सच इप्सिता को बताया था। जिस तरह से अभिमन्यु सारी बातें इप्सिता को एक्सप्लेन कर रहा था, उससे ये बात इप्सिता को समझ में आ गई थी कि वो झूठ नहीं बोल रहा है। उसकी सच्चाई उसकी आंखों में ही नजर आ रही थी। इप्सिता ने अभिमन्यु की बातों पर यकीन कर लिया था। अभिमन्यु इप्सिता के करीब आया और उसने इप्सिता के माथे से अपना माथा जोड़ते हुए कहा, इप्सिता, आपको हमारी बात पर भरोसा है ना? हम झूठ नहीं बोल रहे हैं और हम सच में आपके साथ शादी करना चाहते हैं, फिर चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। करेंगी ना आप हमसे शादी? टू बी कंटिन्यूड। वैसे आज आप लोगों को पूरा सच पता चल गया ना, जिसे आप लोग इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे? और तब अभिमन्यु इप्सिता को सच बताया, ये बोल बोलकर आप लोगों ने हमारा भी दिमाग खराब किया हुआ था। तो अब आखिर इप्सिता को पूरा सच पता चल गया है, तो क्या होगा अब इसका फैसला? क्या लगता है आप, वो अभिमन्यु को माफ करके उसे पूरे दिल से एक्सेप्ट करेगी और एक दूसरा मौका देगी या फिर नहीं? और क्या अपने करियर को छोड़कर सच में उससे शादी करके वापस उदयपुर जाना चाहिए? आप उसकी जगह होते तो क्या करते, बताइए कॉमेंट में।